अब है जी सूरज सफ, पूरे पारे के अंदर से एक कॉन्क्रीट सूरत सूरज सफ दिख रही है इस वक्त हमें, जैसे पिछले पारे में सूरत हदीद थी। 14 आयात है, 61 नंबर सूरह, मरकजी मजमून कूनू अंसारुल्लाह, अंसारुल्लाह बन जाओ। मुनज्जम सफ बंदी के साथ सीसा पिलाई दीवार बनेंगे, फिर अल्लाह की मदद आएगी। तो क्या है कि दीन के दिफा में माल और जान से जिहाद करना, और इस सूरत के अंदर जो बुनियादी नुक्ता है वो क्या है, बुनियानुम मरसूस। आइए सूरत को पढ़कर इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बहलिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम। रुकू नंबर 1 आयत 129, कौलो फेल के तजाद की मजम्मत। जमीन और आसमान की हर हर चीज अल्लाह की पाकी बयान करती है, और वही गालिब और हिकमत वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। जरा सा कान रखिए इस पे, ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? क्या जवाब देंगे इसका हम लोगों को भी और अल्लाह को भी? तुम जो करते नहीं इसका कहना अल्लाह को सख्त नापसंद है। बेशक अल्लाह तआला इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में सफ बस्ता जिहाद करते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई इमारत है। और याद करो जब के मूसा ने अपनी कौम से कहा है, मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? हालांकि तुम्हें बखूबी मालूम है कि मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल हूँ। बस जब वो लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ने इनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया। अल्लाह में दिल के टेढ़पन से बचा ले, और अल्लाह तआला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, ए मेरी कौम यानी बनी इसराइल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे पहले की किताब तौरात की मैं तस्दीक करने वाला हूँ, और अपने बाद आने वाले एक रसूल की मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, जिनका नाम अहमद है। फिर जब वो इनके पास खुली दलीलें लाए तो ये कहने लगे, ये तो खुला जादू है, इस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है, और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं करता। अल्लाह में जुल्म से बचा दे, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें। नोट कीजिए, पहले भी ये आयत आई थी, कहाँ याद करिए, सूरह तौबा में। और अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुंचाने वाला है, गो काफिर बुरा माने, वो ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि इसे और तमाम मजाहिब पर गालिब करे, अगरचे मुशरिकीन ना खुश हों। एक आयत ईमान से मतलब, सफ टू, जो कहना है वही करना है। बोलिए इंशाल्लाह। फेथ इन एक्शन, मुसलमान के कॉल और फेल में मुताबकत होनी चाहिए। जो बात करने की हिम्मत और नियत ही ना हो फिर वो बात मुंह से निकालनी ही नहीं चाहिए। मुसलमानों को अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना है, झूठे दावों से बचना है, जिंदगी में हर किस्म की बुराई से जिहाद करना। और रुकू नंबर 2 में 10 से 14, बेहतरीन तिजारत और इसका अजर। जहाँ सूरत पूरी होगी तो ये सारे नुक्ते इकट्ठे हो जाएंगे जिसका तذکرہ शुरू में हुआ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा, आपको एक डील दी जा रही है, आपके नाम आपके रब का पैगाम, ये मेरे साथ तिजारत करोगे? कौन कौन जैस कहता, वही बैठ के सुनेगा, बाकी तो बेशक ना सुने। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बतला दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? बोलिए जी अल्लाह, जरूर बताइए। अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह मुआफ फरमा देगा और तुम्हें इन जन्नतों में पहुंचाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और साफ सुथरे घरों में जो जन्नत अदन में होंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वो अल्लाह की मदद और जल्द फतायाबी है। आपको तो जायद जुबानी याद हो गई होगी, नसरु मिन अल्लाह ही व फतहुन करीब। और ईमानदारों को खुशखबरी दे दीजिए। अब जरा आप आखिरी आयतों पर गौर करिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, कूनू अंसार अल्लाह, लफ्ज़ अंसार अल्लाह, देखिए ये नहीं कहा कौन अंसारु फी दीन अल्लाह, अल्लाह ने दीन के लफ्ज़ को एक्सक्लूड करके डायरेक्ट अपने ऊपर बात ले ली। हे ईमान वालो, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ, जिस तरह हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने। आप कुरान सीख कर सिखा कर अल्लाह के मददगार बन जाते हैं, अल्लाह के प्लान में रंग डालते हैं हम। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह की राह में मददगार हैं, बस बनी इसराइल में से एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने कुफर किया, तो हमने मोमिनों की इनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की, बस वो गालिब आ गए। चार आयात ईमान से मुतल्लिक, सफ 10, जिहाद का नफा दुनिया और आखरत में मजीद नफे के साथ मिलता है, जिहाद के अदर पे कोई नहीं पहुंच सकता। सफ 11, तिजारत में इंसान को पहले देना पड़ता फिर कई गुना ज्यादा वापस मिलता। 13, सफ जो अल्लाह की राह में चलेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। 14, सफ अंसारुल्लाह कौन, जो अल्लाह की हर पुकार पर लब्बई कहते हैं। अब जरा सही नायतों में नजर जमाइए। नसरुम मिनल्लाह ही व फतहुन करीब, पूरे दौरे कुरान का मेन थीम यही था। पहले तो कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह ही अला नेमतिल इस्लाम अला नेमतिल कुरान अला नेमतिल हिदाया, और फिर कहूँगी कि आज किस दौर में अल्लाह के इस दीन को लोगों ने पीछे डाल दिया, मुसलमानों ने अमल में पीछे डाल दिया और गैर मुस्लिमों ने इसकी खूबसूरत बातों को पीछे डालकर अपनी मर्जी से इसकी तावीलात की और इसको बदनाम करने की कोशिश की। ये है वो वक्त कि अल्लाह का दीन पाँव में है, 400 साल हो गए हैं पिछले, इस दीन को लताड़ा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है और इसको दुनिया की नज़रों में बुरा बनाया जा रहा है। ये जो 20th सेंचुरी ख़त्म हुई और 21st सेंचुरी शुरू हुई, अब ये दीन दोबारा उठ रहा है इस वक्त, ये सदी दीन के उठने की सदी है। वो कहते हैं ना, हर मद है जजर के बाद, ये वक्त है इस वक्त वो जो सहाबा पे आया था। जैसे इस्लाम पे मुश्किल वक्त आया, मोमिनों की लॉटरी निकल आई। सहाबा की अभी तक अपने नमाजों का जिक्र नहीं सुना, रोजों का इतना नहीं सुना, वो तो थी ही, तभी तो ये कर सके। फ्यूल होता है फिर ही तो आग आती है, गैस डालते हैं तो अभी तो गाड़ी चलती है। साहबा ने नमाज रोजे हज ज़कात का पेट्रोल जिसमें डाला तो फफेरु इल्लाह की तरह अल्लाह के रास्ते में आए और अंसारुल्लाह बने और रदी अल्लाह अन्हुम के दर्जे पा गए। बिल्कुल इसी तरह आज के इस दौर की नेकी ये है कि अल्लाह के दीन के अंसार बन जाए, और ये दो ही लोग करेंगे, कुरान वाले और जिहाद वाले। कुरान वाले काम शुरू करते हैं और जिहाद यानी किताल वाले उस काम को तकमील पे पहुंचाते हैं। ये एक ही सिलसिले की दो कड़ी है, ट्रेन का पहला डब्बा या आखिरी डिब्बा, दोनों की ट्रेन इंशाल्लाह जन्नत में पहुंचेगी। इमाम बुखारी कई जगह जहाद के लफ्ज के साथ कहते थे हुम अहलुल कुरान। अल्लाह के नबी ने सहाबा को कुरान के जरिए वो रग़बतें दिलवा दी थी और ईमान उनका ऐसे भर चुका था कि वो तो जरा सी बात पे निकलने को तैयार होते थे, लब्बैक कहते थे। और आज अगर आप और मैं अपने ही गम में घुले, अपनी ही खुशियों में मस्त रहे, अपने ही हार सिंगार करते रहे, तो आखिर कब तक? कितना पहनेंगे, कितना खाएंगे, कितने बड़े घर बनाएंगे, कितनी दौलत जमा करेंगे? ठीक है, ब्रेक है ना, आपके पास अगले 10 साल का खाना, तो 1 साल की ब्रेक लीजिए। है ना आपके पास 3 नस्लों को खिलाने पिलाने के लिए जायदादें विरसा, तो मियाँ साहब से भी कहिए जरा 1 साल का ब्रेक लीजिए, एक दफा तो कुरान को समझें, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम, ताकि आपको भी पता चले और आपके बच्चों को भी पता चले कि कुरान भी कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए ब्रेक ली जा सकती है। अल्लाह आपको मुझे इस काम के लिए चुन दे। आज के दौर के अबू बकर, आज के उमर, आज के उस्मान, आज के अली और बाकी सहाबा की तरह के दर्जे आपकी मेरी नस्लों से निकलेंगे इंशाल्लाह। शर्त एक है कि आप और मैं अंसारुल्लाह बन जाए तो नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब। अब आप कहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा हो, अंसारुल्लाह बने, कैसे बनेगा? जो माँ बाप करेंगे बच्चे वही करेंगे ना। हम अपने बच्चों को मोहसिन देखना चाहते हैं ना, तो पहले आप मुस्लिम और मुस्लिम पे मोमिन तो बने। आप मुस्लिम भी नहीं है तो बच्चा आपका जो है वो मुजाहिद बन जाए, फोर्थ दर्जे मोहसिन से, पहले मुस्लिम फिर मोमिन फिर मोहसिन फिर मुजाहिद। और जो मुजाहिद नहीं होगा आज के दौर में वो जरूर मुनाफिक होगा। अल्लाह ताला आपकी मेरी इज्जत रख ले। और इंसान माँ बाप की वजह से शक्ल के तौर पे खूबसूरत हो सकता है, लेकिन मोहसिन बनने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके मेरे लिए पैगाम क्या है कि अपने बच्चों को जाहरी हुसन के साथ साथ अंदर के हुसन का भी तोहफा देकर दुनिया से जाओ। और ये मैंने देखा है कि अल्लाह आजमाइशों में तो डालता है, इसमें तो देर इज नो डाउट अबाउट, लेकिन अपने रास्ते में खपने वालों को अल्लाह बिल आखिर सुरखरू कर देता है। क्या पता आपकी कौन सी मेहनत कुरान की, दीन की, इस्लाम की खिदमत की, अल्लाह के दीन के दिफा की आपके बच्चे को इस्लाम पे ले आए। लोग कहते हैं हमने इतना कुछ किया मिला क्या, बच्चे तो फिर भी बिगड़ गए। भाई तुम ना करते तो तुमने भी बिगड़ जाना था। हो सकता है तुम इनको दुआएं देते रहो, कोशिश करते रहो, एक वक्त है वो आ जाएंगे। तब देखिए कि सूरत का आगाज मुनाफिकिन के जिक्र से हुआ था और इख्तिताम मोमिनीन से हो रहा है। अपने आप से ये चंद सवाल करते जाइए कि हम ये खा पी कर अपने काम को कैसे लेंगे और अपनी मसरूफियात का जायजा ले। इधर आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ, जब भी फारिग हो अपने सिर्फ एक दिन के वक्तों में से वो वक्त तो ढूंढिए, कितना वक्त इस्लाम के लिए और कितना वक्त अपने लिए। आप कहेंगे नमाज रोजा हज जकात, नहीं ये इस्लाम के लिए नहीं है, ये तो आपके अपने लिए, ये तो आपके फरायज है। इस्लाम के लिए क्या है कि इस्लाम को उठाइए। आप कहते हैं मैं बड़ी कमजोर हूँ, तो क्या अब अगर आज कमजोर है अल्लाह कुव्वत देगा? अंसारुल्लाह बनने के लिए कोई सुपर ह्यूमन नहीं बनना पड़ता, हम जैसे कच्चे पक्के टूटे फूटे लोगों से अल्लाह काम लेता। कोई फरिश्ता नहीं होगा इधर, कोई साहबा की तरह से दुनिया में ही बहुत आला मुकाम पे नहीं होगा। आपका मेरा जितना कोई ईमान है ना, ईमान की जमा पूंजी इकट्ठी करके खड़े हो जाए, जो सलाहियत है ना ले लीजिए, चल पड़े अल्लाह ये लेके आई हूँ पूंजी, अल्लाह खुद ही डाल देगा। आप देखे हजरत मूसा ने ऐसा फेंका था, उस असा से समंदर में रास्ते कैसे बने? अल्लाह की तरफ से। वमा रमई तेज रमई तब लाकिन अल्लाह रमा, नबी के हाथ से एक मुट्ठी फिकवाई थी, उस मुट्ठी के एक एक कंकर को बुलेट बनाकर दुश्मनों की आंखों में किसने डाला? अल्लाह ने डाला। आप कहते हैं कि हमारी कोशिशों से क्या होगा? ना आपको फायदा होगा, कोई मुसलमान ना हो आप मुस्लिम रहेंगे। देखिए इस्लाम का गलबा तो आना है, अल्लाह के नबी ने हदीसों में जो बात बता दी वो जाकर पढ़ लीजिए कि कच्चे घरों में भी इस्लाम आएगा। और आज आगे आपके ये सोशल मीडिया ने हर घर में अलमोस्ट कुरान तो पहुंचा दी है ना, ताकत वाले के साथ ताकत के जोर पे आएगा। असल दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा हिस्सा डलवा दे इसमें और हमें इसका हिस्सा बना दे। फेथ इन एक्शन के पॉइंट्स क्या हैं? अपने ईमान में इखलास लाना, माल की जरूरत हो तो माल से जिहाद करना है, जहाँ अमली जिहाद की जरूरत हो तो वहां बुजदिली नहीं दिखानी, और अल्लाह की राह में जो जिस दर्जे का जिहाद कर रहा है हर मुमकिन उनका साथ देना है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे। आगे है जी सूरज सफ के बाद सूरज जुमा, दोनों का रब लीजिएगा। सूरज सफ में सफ बंदी और इत्तेहाद की बात हुई, कानों बुनियादों मरसूस, सीसा पिलाई दीवार बनना है मुसलमानों ने। सूरत जुमा में अब किताब और सुन्नत से जुड़कर वो तरबियत पाना जिसके बाद बिखरी हुई कौमें बुनियादों मरसूस बनती हैं। अल्लाह ने यहाँ यहूद के साथ इल्म की एक बड़ी ही बोझल किस्म की मिसाल दी है, गधे का बोझ का है उस इल्म को जिसपे अमल ना हो। तो गोया के बुनियादों मरसूस बनने के लिए क्या तरबियत चाहिए, ये सूरह जुमा में है, ओनली 11 आयात है। नमाज जुमा के अहकाम भी हैं। आखिरी रसूल की बेसत का मकसद क्या है? तरबियत और तजकिया और इल्म हकीकी पाने की तलब क्या है? और फजाइल ये सूरत के हैं। तिर्मिजी की रिवायत से पता चलता है कि अल्लाह के नबी जुमे की नमाज में सूरत जुमा और सूरत मुनाफिकून पढ़ते थे। और इसमें रब्त देखिए कि सफ सफ बंदी इत्तेहाद कानम बुनियानम मरसूस पिछली सूरत में पढ़ा, इसके लिए सुन्नत से जुड़ना लाजमी है। सहाबाए कराम नबी के साथ जुड़े हुए थे तभी कुछ करके गए, वरना यहूद की तरह इल्म ले तो लो लेकिन उस पर अमल ना कर सकोगे। और ख़ास तौर पे आप देखिएगा कि सूरत में जिसको आप कहते हैं ना ऑन द स्पॉट सिचुएशन क्रिएट करके तरबियत की जा रही है, ये काम सिर्फ ऑन साइट पे हो सकता है, ऑनलाइन पे नहीं होता। ये आप खुद देखेंगे और देख ही रहे हैं कि जो चीज जहां वहां आप एक हिस्सा बन के बैठे होते हैं ना, आप उसको महसूस करते हैं। अब जितने लोग इस वक्त जूम रूम में सुन रहे हैं एज अ रजिस्टर्ड, शुरू भी करते सुनते भी एंड पे भी ये और वो कर रहे हैं, वो उन लोगों से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं जिसके बगैर सुन रहे हैं ओपन चैनल्स पे, और जो उसके बाद सुनेंगे यानी बाद में यानी अपने सहूलत से, उनका फायदा जरा सा और कम होगा। यानी आपके जितना करीब बैठे हैं उतना सेक ज्यादा आता है। तो अपने आप को जरूर किसी ऐसी जगह पे कुछ अरसे के लिए पेश कीजिए कि ले भाई हम बिगड़ बुगड़ के आ गए हैं, हमें सही कर दो। इल्म आपका तज़किया और तरबियत करता है। ये है जी सूरत जुमा का टॉपिक, और यहाँ फिर कहूंगी कि हर जुमे को खुतबा जो मिलता है ना मस्जिद में, ये मर्दों का भी असल में यही काम था कि इनकी तालीम और तज़किया का चलो वंस अ वीक सिलसिला तो रहे, पर पता चला कि वो बेचारे वक्त ही नहीं पाते और आखिरी लफ्जों में आते हैं और पहली रकत में शामिल होकर दूसरी सलाम फेर के भाग जाते हैं। अल्लाह हमारे मर्दों के वक्त में बरकत दे। मैं जुमे को देखती हूँ कि जब कोई जो भी होते हैं खुतबा देने वाले, वो खुतबा शुरू करते हैं तो कितने लोग हैं, और जब वो खुतबा पूरा करते हैं तो एंड तक कितने हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे मर्दों की नमाजें जुम्मे में बदल दे, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ जोहर की नमाज हो जुमा ना हो, और वो भी फिर दो रकत। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहुलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। पहला रुकू है आयत 1 से 8। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के मकासिद, सारी चीजें जो आसमान और जमीन में है अल्लाह की पाकी बयान करती हैं। जो बादशाह नहायत पाक है, गालिब और बाहिकमत है, वही है जिसने अनपढ़ लोगों में से उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और इनको पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन जो इससे पहले खुली गुमराही में थे, अल्लाह हमारा भी इस सारी चीजों पर अमल कर दे और दूसरों के लिए भी इन्हीं में से जो अब तक उनसे नहीं मिले, और वही गालिब बा हिकमत है। ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अपना फजल दे, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, इनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हो। अल्लाह की बातों को झुठलाने वालों की बड़ी बुरी मिसाल है। अल्लाह खुद ही बता रहे हैं कि मिसाल अच्छी नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेरी बात को झुठलाया उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है। और अल्लाह तआला ऐसी जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कह दीजिए कि यहूद, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। ये कभी भी मौत की तमन्ना ना करेंगे बवजह इन आमाल के जो अपने आगे अपने हाथों से भेज रखे हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो, दवाइयां खाते हो, चेकअप कराते हो, इंश्योरेंस लेते हो, फिक्रे लगी हुई है कि हमें कुछ हो ना जाए, वो तो तुम्हें पहुंच कर रहेगी। मर फिर भी जाना है, जितना मर्जी इंसान एहतियात कर ले तो फिर क्यों ना उसके लिए तैयारी की जाए जो आके रहेगी। फिर तुम सब छुपे खुले के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे वापसी का सफर, और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम काम बतला देगा। तो जुमला लिख लें, जीने वालों को जाने की तैयारी करनी है, फेथ इन एक्शन, अल्लाह से इसका फजल मांगना, कुरान को समझ कर पढ़ना, फिर अमल करना, और फिर उसके जरिए अपना तज़किया करना। रुकू नंबर 2, 9 से 11, अहले ईमान के लिए हिदायत। या अय्युल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, आपके नाम आपके रब का पैगाम। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख छोड़ दो। ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और बकसरत अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि तुम फलाह पा लो। और वह जब कोई सौदा बिकता देखे या कोई तमाशा नजर आ जाए तो इसकी तरफ दौड़ जाते हैं और आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो है वो खेल और तिजारत से बेहतर है, और अल्लाह ताला बेहतरीन रोजी रिसा है। एक आयत ईमान से मुतल्लिक 9, वो हलाल कमाई भी जायज नहीं रहती जो जुमे की नमाज या खुतबा छोड़कर कमाया जाए। मर्दों के लिए पैगाम है, भाइयों के लिए पैगाम है, आप अपने बेटों को अपने शोहरों को ये पैगाम दीजिए, जुमे की नमाज कभी कुर्बान ना करें। कमाई नहीं कर सकते तो खेल के लिए छोड़ सकते हैं, नींद के लिए छोड़ सकते हैं, दुनिया की पढ़ाई के लिए छोड़ते हैं, सब वो जॉब छोड़ दीजिए उस दिन की, जितना भी उसका नुकसान हो, क्योंकि एतायरे लाख होती उस रिस्क से मौत अच्छी, आती हो जिससे परवास में कोताही। फेथ इन एक्शन, जुमे की नमाज के लिए जल्दी करनी है, नमाज जुमा को अपनी तिजारत और जाती फायदों पर फोकियत देनी है। और जुमे का दिन मुसलमानों के लिए बड़ा अहम दिन होता है, जन्नत में भी जुमा होगा, यौमुल मजीद कहा जाएगा, जिस दिन जन्नती अल्लाह ताला से मिलने जाएंगे और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होकर जाएंगे। और जुमा उम्मत मुस्लिमा का इम्तियाज है, हालांकि यहूद और नसारा की किताबों में भी उनको जुमा ही दिया गया था, लेकिन नसारा ने अपनी मर्जी से इतवार का दिन चुना और यहूद ने हफ्ते का दिन चुना। मर्जियां करने को दिल चाहता है तो ऐसे ही है, और जुमा ईद की तरह का दिन है, इसमें इख्तमाम होना चाहिए हर तरह का। और सूरत जुमा के बाद अगली सूरत मुनाफिकून है, अब एक और जबरदस्त सूरत आने लगी है, सूरत सफ की तरह, जरा सा तवज्जो रखते हैं, दोनों का रब देखिए। सूरत जुमा में इस्लामी रियासत की मजबूती के लिए तालीम, तरबियत और तजकिये की बात हुई, कि एक ऐसी कौम तैयार हो जो जुमे की नमाजों के अंदर से वो पैगाम लेकर उठे कि जो उनको उम्मत बना दे, भीड़ ना बनाए। अब सूरत मुनाफिकून में उससे ऑपोजिट किरदार है, क्या वजह है कि लोग फिर उस तरह के नहीं बनते जैसा बनने की जरूरत है? दूसरे लफ्जों में कहे कि नाम भी मुनाफिकून, इस सूरत का पैगाम भी मुनाफिकत, और साथ ही साथ इसका इलाज भी है। और यहाँ ये भी देख लीजिए कि सूरह बकरा के शुरू में जो तीन गिरोहों का तذکرہ था, उसमें से दूसरे का तذکرہ आ गया, मुनाफिकून भी से सूरत मोमिनून गुजरी। 11 आयात हैं, थोड़ा सा इस सूरत का मिजाज समझते हैं, मुनाफिकीन की खसूसियात भी हैं और उनकी बहुत सारी बातों का जवाब भी है। निफाक का इलाज इनफाक से करो, ये है इसमें नुस्खा। इसका नजूल शाबान 6 हिजरी में हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाजों में भी सूरत को पढ़ते थे, सही मुस्लिम से रिवायत साबित है 2063। आइए देखते हैं कि हम इस सूरत को कैसे पढ़ेंगे, यानी सूरह मुनाफिकून भी अल्लाह के नबी नमाजों में पढ़ते थे जुमे की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीम, रुकू नंबर 1 आयत 1 से 8, मुनाफिकीन के बुरे आमाल। इजा जाकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नक लरसूलुल्लाह, बड़ी बोझल पड़ने वाली आयतें हैं दिल पे। तेरे पास जब मुनाफिकीन आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह तो जानता है कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, यानी ये कौन सी कोई नई बात बता रहे हैं आपको, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतन झूठे हैं। किसकी बात सच्ची? अल्लाह की। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, बस अल्लाह की राह से रुक गए। सोचिए, बस अल्लाह की राह से रुक गए, बेशक बुरा है वो काम जो ये करते हैं, ये सबब से है कि ईमान लाकर फिर काफिर हो गए, बस इनके दिलों पर मुहर कर दी गई है, अब ये नहीं समझते। जब आप इन्हें देख लें तो इनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम होंगे, और ये जब बातें करने लगें तो आप इनकी बातों पर अपना कान लगाएं। बड़ा ही खतरनाक है वो बंदा जो बातें बड़ी अच्छी करे मगर झूठी करे, जो बातों में बड़ा ही मीठा हो लेकिन उसका अपना अकीदा खराब हो। अल्लाह हमें ऐसी चकनी चुपड़ी वाली बातों वालों से भी बचाए और हमें खुद भी ऐसा होने से बचाए। गोया कि ये लकड़ियां हैं और दीवार के सहारे लगाई हुई हैं, हर सख्त आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं, यही हकीकी दुश्मन है, इनसे बचो, अल्लाह इन्हें गारित करे, कहाँ से फिरे जाते हैं। और जब इनसे कहा जाता कि आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तगफार करें, तो वो अपने सर मटकाते हैं और आप देखेंगे कि वो तकबर करते हुए रुक जाते हैं। इनके हक में आपका इस्तगफार करना और ना करना दोनों बराबर हैं। नबी की इस्तगफार भी मुनाफिक को फायदा नहीं देती तो आप सोचिए कि फिर किसकी देगी? अल्लाह ताला हरगिज ना बख्शेगा, बेशक अल्लाह ताला ऐसे नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला हमें हिदायत पे रखे। यही है वो जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के रसूल के पास हैं इन पर कुछ खर्च ना करो, यानी डीमोटिवेट करते थे दूसरों को भी। ये क्या आप हर वक्त ही साथ, आपको कुछ मिलता है इधर जाने का, कुछ पेशे मिलती है, आपके बच्चे नहीं मुतासिर होते, ये बातें करते हैं दीन के लिए भाग दौड़ करने वालों को। क्यों? ताकि यहां से वो इधर उधर हो जाए, यानी उनका काम ही खत्म हो जाए, आगे बढ़ ही ना सके। और आसमान और जमीन के खजाने अल्लाह की मलकियत हैं, लेकिन ये मुनाफिक बेसमझ हैं। ये कहते हैं अगर हम अब लौट कर मदीने जाएंगे तो इज्जत वाला वहां से जिल्लत वाले को निकाल देगा। सुनो, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और उसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए है, लेकिन ये मुनाफिक नहीं जानते। कितनी प्यारी आयत है। ईमान से मुतलिक दो आयात मुनाफिकून 3, अल्लाह इनको हिदायत नहीं देता जो नाफरमानियों पर डटे रहें, बिलाखिर मोहर लगा देता है। फिर 8 नंबर आयत, अल्फाज दिलों के बुग़्ज़ को जाहिर कर देते हैं। कीने की बात पीछे हुई, आप देखेंगे जो बंदा आपके बारे में जैसा सोचता है ना, उसके मुंह से वैसे ही फूल झड़ते हैं, और जिसके दिल में कदूरत होती वो जरूर आपका दिल दुखा के ही जाएगा, पक्की बात है। तो कोई बात नहीं, आप देखिए कि सूरत मुनाफिकून है ना, इस पे बहुत दिल खोल के बातें हो चुकी है हमारी, इन डेप्थ स्टडी में ये सूरत भी हुई थी। ऑलमोस्ट हमने सारी मुसब्बेहात कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। निफाक के 4 दर्जे नोट कीजिएगा। कोताहियों का जवाब पेश करने के लिए झूठ बोलना, ये बात तो आपने बड़ी दफा सुनी ना, मुनाफिक वो जो झूठ बोले। हम सबको जुबानी हदीस आती है निफाक की 4 अलामतें, लेकिन यहाँ नोट करिए लफ्ज़, कोताहियों का जवाब पेश करने के लिए झूठ बोलना, झूठ में वजन पैदा करने के लिए झूठी कस्में खाना। थोड़ी सी बात होती है बाकी अपने पास से डाल लेते हैं। दूसरों को माल और जान की कुर्बानी देने से रोकना, इसमें झगड़ा भी हो जाता है कभी, और दीन के लिए कुर्बानियां देने वालों से दुश्मनी करना। ऐसा क्यों करते हैं कि ये कार्य अब हमें भी करना पड़ेगा? पहले इनको तोड़ो तो फिर हमारा टूटना ना नजर आए। फेथ इन एक्शन, किसी जाती फायदे के लिए दीन का नुकसान नहीं करना, लोगों की बनावटी बातों और जाहरी वजाकता से मुतासिर नहीं होना, अपने दुश्मनों से बेखौफ नहीं होना, लोगों से वक्ती इज्जत और मर्तबा पाने के लिए हक का साथ नहीं छोड़ना। अल्लाह हमें तौफीक दे दे। रुकू नंबर 2, 9 से 11, मकसदे हयात को जानिए और आपके नाम पुकार आपके रब की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ये है घर और कुरान साथ साथ, सुनिएगा। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें, और जो ऐसा करें वो बड़े ही नुकसान पाने वाले लोग हैं। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने फरिश्ते नजर आ रहे हैं, और जुबान पे पुकार क्या है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। और जब किसी का वक्त मुकर्रर आ जाता है फिर इसे अल्लाह ताला हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो इससे अल्लाह बखूबी वाकिफ है। कैसी आयत है जी, ऐसे लगता है जैसे अंदर से किसी ने पढ़ लिया। एक आयत ईमान से मुतल्लिक, 9 मुनाफिकून, माल और औलाद मकसद हयात नहीं जराए हयात है, यानी ये जरिए हैं मकसद नहीं है। आप देखिए कि दो चीजें इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल करने का अमूमी बायस होती हैं, एक माल और एक औलाद। और निफाक की बीमारी का असल सबब भी दुनिया की मोहब्बत है, तो क्या करें फिर, बच्चे पैदा ना करें, दुश्मन हो जाएं? नहीं, आपने नहीं पढ़ा कि ये वो औलादे नहीं है जो अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये सदका जारिया वाली औलादे नहीं है, ये वो औलादे नहीं है जिनको अल्हम्दुलिल्लाह आपने हिफ्ज कराया, कुरान पढ़ाए, तबलीग करवाई, उनको आपने मेहनतों से सींचा, ये आप जैसों की बात नहीं हो रही, ये उनकी बात है जिन्होंने अपनी औलादों को पैदा करके दुनिया के हवाले कर दिया, जिनके औलादों को दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया, बेबी सिटिंग दुनिया ने की और सोचें दुनिया ने दी, जिनकी औलादें उनको खुद दीन पे अमल करने से रोक रही हैं ये उनकी बात है, जो अपनी औलादों के उनकी खुशियों के नाम पे अल्लाह को नाराज करते हैं और अपने से कई गुना छोटे बच्चों से इतना डरते हैं जितना अल्लाह से डरने की जरूरत है। तो क्या पता चला कि किसी को भी खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं करना, अपनी चीजों और माल का दिल खोल कर सदका करना है। कल हमारी सदके की वसीयत से ज्यादा आज अपने हाथ से सदका करना ज्यादा फायदा देगा। बच्चों को आप कह देंगे हमारे पास सारा कुछ अल्लाह को दे देना, नहीं कह सकते आप, सॉरी आप लिमिट्स को क्रॉस करें, जिंदगी में आप जो मर्जी कर लें वो आपका है। तो अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल पर्चे से कामयाबी से गुजारते हैं। इन दो पे ही बंदे का ईमान भी जाता है और इसी से ईमान भी